13वां अध्याय वैदिक युग का धार्मिक जीवन। पहला, देवता और उनकी पूजा। वैदिक साहित्य प्रायः धर्मपरक है, अतः उससे वैदिक युग के धार्मिक विश्वासों तथा पूजा विधि आदि के संबंध में विशद रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक युग के आर्य विविध देवताओं की पूजा किया करते थे। इंद्र, मित्र, वरुण, यज्ञि, यम आदि अनेक बहुत से देवता थे, जिन्हें तृप्त व संतुष्ट करने के लिए वे अनेक विध विधि विधानों का अनुसरण किया करते थे। संसार का स्रष्टा, पालनकर्ता एवं संहर्ता एक ईश्वर है, यह विचार वैदिक कार्यों में विद्यमान था। उनका कथन था कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, मरुतमान, मातृस्वा, यम आदि सब एक ही सर्वोच्च सत्ता के विविध नाम हैं, और उस एक सत्ता को ही विद्वान लोग इंद्र, मित्र, वरुण आदि विविध नामों से पुकारते हैं। संभवतः एक ईश्वर की यह कल्पना वाद के काल में विकसित हुई, और आरंभ में आर्य लोग प्रकृति की विविध शक्तियों को देवता के रूप में मानकर उनकी उपासना किया करते थे। प्रकृति में हम अनेक शक्तियों को देखते हैं, वर्षा, सर्दी, गर्मी, दिन, रात, आंधी, तूफान, भूकंप, सब प्रकृति के विविध रूप हैं। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों से ही कभी घनघोर वर्षा होती है, कभी कड़ी धूप चमकती है, कभी तूफान आते हैं और कभी पृथ्वी डोलने लगती है। जिन शक्तियों के कारण प्रकृति ये विभिन्न रूप धारण करती है, उनके कोई अधिष्ठात्री देवता भी होने चाहिए, और इन देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य अपने सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकता है। यह विचार प्राचीन आर्यों में विद्यमान था, इसीलिए उन्होंने बहुत से देवताओं की कल्पना की थी और उनकी स्तुति प्रार्थना के लिए जिन मंत्रों का दर्शन व निर्माण किया था, वैदिक संहिताओं में वे संकलित हैं। देवताओं की संख्या और उनके विभाग। वैदिक युग के आर्य जिन देवताओं में विश्वास रखते थे, वेदों में उनकी संख्या 33 कही गई है, पर ऐसे मंत्र भी वेदों में विद्यमान हैं जिनके अनुसार देवताओं की संख्या इससे बहुत अधिक है। एक मंत्र में तो देवताओं की संख्या 3336 कही गई है, पर न केवल वैदिक संहिताओं में अपितु ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्रायः प्रायशः 33 देवता ही गिनाए गए हैं, और इन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से देवों के 3 विधत कहे गए हैं, और यास्क ने निरुक्त में देवताओं को पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान और ध्रुव स्थान इन 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। ध्रुव स्थानीय देवताओं में ध्येय, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, भूषण, विष्णु, आदित्य, विवस्वान, उसस और अश्विनो प्रधान हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, त्रित, आपत्य, अपान पात, रुद्र, मातृस्वा, अहिर बुधन, अज, एकपाद, मरुत, वायुबात, प्रजन्य और आपह को अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि, बृहस्पति, सोम और विविध नदियां हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रकार के अन्य देवता भी वेदों में आए हैं, जिन्हें भावात्मक देवताओं की संज्ञा दी गई है। ऐसे देवता मन्यु, श्रद्धा, धाता, त्वष्टा आदि हैं। इनकी स्तुति भी अनेक मंत्र वेदों में विद्यमान है। इन वेदों में इन विविध देवताओं का जो स्वरूप प्रतिपादित है, उसका संक्षेप में निरूपण करना वैदिक युग के धार्मिक मंतव्यों को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। धियु स्थानीय देवता। धियु स्थानीय देवताओं में धियो सबसे प्राचीन व प्रधान हैं। आर्य जाति की ग्रीक शाखा के लोग भी जेओस या जियस के रूप में इस देवता की पूजा किया करते थे। धियो देवता आकाश का मूर्त रूप है। उसे पिता तथा जनिता अर्थात जनयिता या उत्पन्न करने वाला कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने विश्व के पिता या जनयिता के रूप में उसकी कल्पना की थी। पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि बृहस्पति सोम और विविध नदियां हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रकार के देवता भी वेदों में आए हैं जिन्हें भावात्मक देवताओं की संज्ञा दी गई है। ऐसे देवता मन्यु श्रद्धा ध्याता त्वष्टा आदि हैं। इनके स्तुति में भी अनेक मंत्र वेदों में विद्यमान है। वेदों में इन विविध देवताओं का जो स्वरूप प्रतिपादित है उसका संक्षेप में निरूपण करना वैदिक युग के धार्मिक मंतव्यों को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। धियु स्थानीय देवता। धियु स्थानीय देवता में देवताओं में धियो सबसे प्राचीन व प्रधान है। आर्य जाति की ग्रीक शाखा के लोग भी जेओस या जियस के रूप में इस देवता की पूजा किया करते थे। धियो देवता आकाश का मूर्त रूप है। उसे पिता तथा जनिता अर्थात जनयिता या उत्पन्न करने वाला कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने विश्व के पिता या जनयिता के रूप में उसकी कल्पना की थी। ऋषि राहुगण पुत्र गौतम जहां धियो को नह पिता हम सबके पिता कहते हैं वहां ऋषि वामदेव के अनुसार वे इंद्र तक के करता हैं। उनका उल्लेख प्रायः पृथ्वी के साथ द्वा पृथ्वियों के रूप में आया है। आकाश का मूर्त रूप धियो पिता है और पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता जो वनस्पति अन्न आदि उत्पन्न करती है उसे जनक धियो ही है। उसके जनक धियो ही है। द्वाबा पृथ्वी के रूप में धियो और पृथ्वी के एक साथ उल्लेख किए जाने का कारण यही है कि वेद के शब्दों में धियो पिता और पृथ्वी माता है। आलंकारिक रूप में वेद में धियो को एक ऐसा वृष अर्थात वृषभ कहा गया है जो नीचे की ओर मुख करके रंभाता है। आकाश में जब गरज के साथ पानी बरसता है तब उससे संचित होकर ही पृथ्वी माता अन्न आदि उत्पन्न करती है। इसी को अलंकार द्वारा प्रकट करने के लिए धियो को वृषभ कहा गया है। पृथ्वी की जो सृजन शक्ति है धियो देवता उसी को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए उसे सबका पिता एवं पृथ्वी सदृश देव का भी कर्ता बताया गया है। धियो का ही एक रूप वरुण है। वरुण का उल्लेख प्रायः मित्र के साथ साथ मित्रा वरुणों के रूप में आता है। उन्हें सब संसार का सब सत्ताओं का और सब मनुष्यों तथा देवताओं का राजा कहा गया है। परमेश्वर जहां सबको उत्पन्न करने वाला तथा पिता है वहां साथ ही सबका शासक व नियामक भी है। ईश्वर के पितृ रूप को धियो प्रकट करता है और नियामक रूप को वरुण। अलंकारिक रूप से वेदों में यह वर्णन किया गया है कि परम व्योम के में स्थित अपने भवन में बैठे हुए वरुण विश्व के संपूर्ण कार्यकलाप का निरीक्षण करते हैं। उनका भवन अर्थात सदस्य अत्यंत महान है। वह बहुत ऊंचा है और सहस्त्र स्थूनों अर्थात खंभों पर खड़ा है। इस भवन में सहस्त्र द्वार हैं। सूर्य उदित होकर विश्व की परिक्रमा करते हुए जो कुछ देखते हैं उसकी सूचना वरुण देव को देते हैं। साथ ही वरुण के अपने स्पर्श या अपने स्पर्श अर्थात चर या गुप्तचर भी हैं जो संसार में सर्वत्र विचरते रहते हैं और अपने अनगिनत नेत्रों से सबको देखते रहते हैं। वरुण के ये चर बड़े मनीषी हैं, कभी अन्यथा बात नहीं कहते। दो आदमी एकांत में बैठकर जो मंत्रणा करते हैं वरुण से वह भी छिपी नहीं रहती। वह तीसरा व्यक्ति सर्वत्र उपस्थित रहता है क्योंकि वरुण संपूर्ण विश्व के शासक हैं, अतः वे पापियों तथा व्रतों का उल्लंघन करने वालों को कड़े दंड देते हैं। वरुण के पास से पापी या अपराधी बच नहीं सकता। अनृत भाषण करने वाला उनके पास से कभी बच नहीं पाता। जिन व्रतों या नियमों द्वारा वरुण विश्व का शासन करते हैं वे अत्यंत सुनिश्चित तथा सुदृढ़ हैं। जो कोई इन व्रतों का उल्लंघन करता है वरुण उसे क्षमा नहीं करते, पर अपने उपासकों के प्रति वे दया भाव भी रखते हैं और प्रायश्चित करने वालों के अपराध क्षमा भी कर देते हैं। वस्तुतः वरुण के रूप में वैदिक ऋषियों ने विश्व के नियामक या शासक ईश्वर की ही कल्पना की है। ध्यों के समान वरुण देवता भी अत्यंत प्राचीन हैं। कतिपय विद्वानों ने इसकी सम्मता ग्रीक उन्नरस से प्रतिपादित की है जो आकाश का ही वाचक है। यदि इस समता को स्वीकार कर लिया जाए तो वरुण देवता की कल्पना भी उस समय प्रादुर्भूत हो चुकी होगी जब आर्य जाति की ग्रीक शाखा अन्य आर्यों से पृथक नहीं हुई थी। ध्यु स्थानीय देवताओं में कतिपय ऐसे हैं जिनकी कल्पना सूर्य के विभिन्न गुणों व विशेषताओं को दृष्टि में रखकर की गई है। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व आकाश में प्रकाश की किरणें प्रकट होने लगती हैं और वे अपने शरीर को शुभ्र वस्त्रों से आवृत करके एक नर्तकी के समान अपने को प्रस्तुत करती है। प्रकाश के चमकते हुए वस्त्र पहनकर उषा अपनी अनुपम आकर्षक छवि को प्रकट करती है जिससे रजनी का अंधकार दूर हो जाता है। यद्यपि उषा बहुत पुरानी है पर पुनः पुनः उत्पन्न होने के कारण वह सदा युवती बनी रहती है, वह अजर और अमर है। सूर्य के साथ उषा का घनिष्ठ संबंध है। सूर्य के यात्रा पथ को वही खोलती है, पहले उषा प्रकट होती है और फिर सूर्य। सूर्य उसका उसी प्रकार से अनुसरण करते हैं जैसे कि कोई युवक इस युवती स्त्री का। उसका रंग सुनहरा है और वह ऐसे रथ पर चढ़कर आती है जो ज्योतिष्मान बृहत और चंद्र वर्ण होता है। इस रथ को लाल रंग के सुनियंत्रित घोड़े खींचते हैं। उषा के साथ अंधकार का अंत होकर सर्वत्र उल्लास छा जाता है और सब कोई अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। अतः उषा देवता से वैदिक ऋषियों ने यही प्रार्थना की है कि वे उन्हें धन धान से संपन्न करें और यशस्वी बनाएं। अश्विनो देवता का संबंध भी सूर्य के साथ है। वे संयुक्त या युगल देवता हैं और इनका आविर्भाव उषा तथा सूर्य के उदय के मध्यवर्ती काल में होता है। उषा द्वारा उन्हें जगाया जाता है और वे अपने रथ पर बैठकर उषा का अनुसरण करते हैं। वैदिक साहित्य में इस युगल देवता की महिमा का बड़े विशद रूप से बखान किया गया है। वे दिव्य भीषक हैं और विपत्ति का निवारण करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। च्यवन ऋषि को बुढ़ापे तथा बीमारी से उद्धार कर इन्होंने ही फिर से जवान बनाया था। जिन सिंह विप्रकली को युवा बनाकर इन्होंने विवाह के योग भी बना दिया था। तुग्र का पुत्र भुज्युक एक बार समुद्र के बीच में फंस गया था। जब उसने अश्विनों का आवाहन किया तो ये 100 पतवारों वाली नौका लेकर उसकी सहायता के लिए गए और उसका उद्धार किया। इसी प्रकार की कितनी ही कथाएं वैदिक साहित्य में विद्यमान है जिनसे अश्विनों की शक्ति तथा परोपकार भावना का आभास मिलता है। संभवतः ये देवता प्रकृति के उस शक्ति के प्रतीक हैं जो सूर्योदय के पूर्व व उषा काल के अंतिम भाग में प्रकट होती है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए यह समय बड़े महत्व का है। इस समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य रोगों से छुटकारा प्राप्त कर शक्ति प्राप्त कर सकता है। रात्रि के अंधकार के कारण मार्ग से भ्रष्ट हुए भूजियों जैसे व्यक्तियों को भी अश्विनों द्वारा मार्ग दिखा सकना सर्वथा संभव है। ध्यो और वरुण के समान अश्विनों देवता भी बहुत प्राचीन है। आर्य जाति की ग्रीक शाखा में भी जियोस या जियस के दो युगल पुत्र कल्पित किए गए हैं जो अपने घोड़ों पर बैठकर आकाश के छोर तक जाते हैं। उषा और अश्विनों के बाद सूर्य आकाश में ऊंचा उठने लगता है। इस उदय होते हुए सूर्य को ही मित्र देवता की संज्ञा दी गई है। यह सूर्य के उस सौहार्दपूर्ण रूप का प्रतीक है जो मनुष्यों को नींद से जगाकर अपने अपने काम धंधों में लगाता है और जिसके कारण वे उद्यमशील हो जाते हैं। मित्र देवता का नाम प्रायः वरुण के साथ मित्र वरुणों के रूप में लिया गया है। संभवतः मित्र का संबंध दिन से है और वरुण का रात्रि से। इसीलिए अथर्ववेद में यह प्रार्थना की गई है कि मित्र उस साला को अनावृत कर दे जिसे कि रात के समय वरुण ने आवृत कर दिया था। पारसी धर्म में मित्र के रूप में जिस देवता की पूजा की जाती है वह और वैदिक देवता मित्र एक ही है। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। जब सूर्य पूरी तरह से उदय होकर संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में अपनी बाहुएं फैला देते हैं तब उन्हें सविता कहा जाता है। सविता देवता सबको जीवन देने वाले तथा सब में स्फूर्ति का संचार करने वाले हैं। वे अपने हिरण्य अर्थात सुनहरी रथ से चलते हैं और सभी भूभूमों को देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी रश्मियों द्वारा वे संपूर्ण विश्व की परिपूर्ण कर देते हैं। देवताओं को अमृत तथा मनुष्यों को दीर्घ आयु प्रदान करना सविता का ही कार्य है। वे ही जीवन एवं प्राण शक्ति हैं और सबका उद्बोधन उन्हीं द्वारा किया जाता है। गायत्री मंत्र में सविता देव से ही यह प्रार्थना की गई है कि वे हमारे बुद्धि को प्रचोदित करें। सूर्य के साथ संबंध एक अन्य देवता पूषण है जो सूर्य की पोषण शक्ति के प्रतीक हैं और सूर्य की उत्पादक शक्ति को भी सूचित करते हैं। इसीलिए उन्हें पशुओं तथा वनस्पतियों का देवता भी कहा जाता है। सब मार्गों का उन्हें ज्ञान रहता है। अपने उपासकों को मार्ग प्रदर्शित कर वे लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। मार्गों को निरापद करने, शत्रुओं तथा डाकुओं आदि से रक्षा करने और यात्रा को शुभ बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। सूर्य विश्वान और आदित्य संज्ञक धीव स्थानीय देवताओं का भी वर्णन वैदिक साहित्य में विद्यमान है। ये भी सूर्य की ही विभिन्न शक्तियों के सूचक हैं। सूर्य के विषय में वेदों में यह कहा गया है कि वे मनुष्यों तथा देवताओं के लिए भाषित होते हैं। अपने अंधकार से वे अंधकार का ध्वंस करते हैं, रोगों तथा दुह स्वप्नों का वे विनाश करते हैं और सब प्राणी अपने जीवन के लिए उन्हीं पर आधारित हैं। पारसियों की अवेस्ता में जिस हवरे देवता का उल्लेख है वह सूर्य का ही रूपांतर है। धीव स्थानीय देवताओं में विष्णु के संबंध में अधिक विशद रूप से लिखना आवश्यक है क्योंकि बाद के समय में आर्य लोगों के धर्म में विष्णु का स्थान अत्यंत महत्व का हो गया था, पर ऋग्वेद के देवताओं में उनका स्थान गौण है। वहां विष्णु शब्द केवल 100 बार आया है और केवल 5 सूक्त ही ऐसे हैं जिनके देवता विष्णु हैं। विष्णु देवता की प्रधान विशेषता उनकी क्षिप्र गति है। संभवतः सूर्य की निरंतर गतिशीलता और क्षिप्र गति को दृष्टि में रखकर ही विष्णु देवता की कल्पना की गई थी। सूर्य एक स्थान पर नहीं टिका रहता। संभव प्रातः के समय वह पूर्व दिशा में उदय होता है, मध्याह्न काल में वह आकाश के ठीक मध्य में पहुंच जाता है और सायंकाल होने पर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। कुछ ही समय में वह सारे आकाश का परिभ्रमण कर लेता है। सूर्य का जो यह गतिशील और सक्रिय रूप है, विष्णु देवता उसी का प्रतीक है। यह विष्णु संपूर्ण लोक को अपने तीन पगों द्वारा माप लेता है। इनमें से दो पद या पग तो मनुष्यों को दिखाई देते हैं, पर जो तीसरा पद है वह पक्षियों की उड़ान से भी परे है। इन विशाल पदों के कारण ही विष्णु उरुक्रम और उरुगाय कहता है। विष्णु के ये तीन पद कौन से हैं, इस संबंध में सब विद्वान एक मत नहीं हैं। यास्क के पूर्ववर्ती नैरुक्त आचार्य सौरनाभ के अनुसार विष्णु के तीन पद सूर्य के उदय, मध्यान और सूर्यास्त के परिचायक हैं। एक अन्य नैरुक्त आचार्य शाकपुनि का यह मत था कि विष्णु के तीन पदों से तीन लोक पृथ्वी इस संबंध में सब विद्वान एक मत नहीं हैं। यास्क के पूर्ववर्ती नैरुक्त आचार्य सौरनाभ के अनुसार विष्णु के तीन पद सूर्य के उदय, मध्यान और सूर्यास्त के परिचायक हैं। एक अन्य नैरुक्त आचार्य शाकपुनि का यह मत था कि विष्णु के तीन पदों से तीन लोक पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक अभिप्रेत है। बहुसंख्यक विद्वान इस मत को स्वीकार समझते हैं। वेदों के अनुसार विष्णु का प्रधान कर्तृत्व इसी बात में है कि वे अकेले ही सुदीर्घ एवं सुविस्तृत लोक को तीन पद या पग उठाकर माप डालते हैं। विष्णु के इस कार्य का वेदों में बार बार अनेक रूपों में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में विष्णु का जो यह रूप तीन पगों से संपूर्ण विश्व को माप डालने वाला रूप वर्णित है, उसी से वामना अवतार का वह आख्यान विकसित हुआ। पुराणों में जिस बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादित किया गया है, शतपथ तथा तैत्रीय ब्राह्मणों में भी विष्णु के इस वामन रूप का उल्लेख मिलता है। पर ऋग्वेद से विष्णु का जो स्वरूप परिलक्षित होता है, उसके अनुसार वे सब के गुप्ता अर्थात रक्षक, पालन करने वाले और पृथ्वी लोक, द्यूलोक एवं संपूर्ण भुवन का धारण करने वाले हैं। उन्होंने पृथ्वी तथा आकाश को चारों ओर खूंटियों से कसकर स्थिर किया हुआ है। यह जो संपूर्ण विश्व भली भांति सुस्थिर है, यह विष्णु के कारण ही है। विष्णु के तीन पदों में जो तीसरा या परम पद है, जो पक्षियों की उड़ान से भी परे है, ऋग्वेद में उसका अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। वहाँ मधु का उत्स अर्थात झरना प्रवाहित होता रहता है। बहुत सी न थकने वाली भ्रु श्रृंख गौवें विचरती रहती हैं और देवता वहाँ आनंद मग्न होकर निवास करते हैं। विष्णु का वही परम पद या परम धाम है। विष्णु पद का जो महात्म्य बाद के समय में माना जाने लगा और उसकी पूजा भी की जाने लगी, उसका मूल भी वेदों में पाया जाता है। इसी प्रकार सनातन पौराणिक धर्म के विकास के साथ विष्णु के वराह अवतार और कुर्मावतार आदि को जो अनेक कथाएं प्रचलित हुई है, उनका मूल भी वेदों में विद्यमान है। वैदिक संहिताओं में विष्णु देवता का वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जो पौराणिक धर्म में है, पर विष्णु के इस महात्म्य के बीज वेदों में अवश्य विद्यमान है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता डैश ऋग्वेद में इंद्र देवता का स्थान सर्वोच्च है। उसमें 250 ऐसे सूक्त हैं जिनके देवता 250 ऐसे सूक्त हैं जिनके देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद के चौथाई के लगभग भाग में इंद्र की स्तुति व गुणगान पाए जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इंद्र वैदिक आर्यों के जातियों पर विजय प्राप्त की थी और वृत्र जैसे दानवों का संहार कर आर्यों को भूमि प्राप्त हुई थी। 50,000 कृष्ण वर्ण के लोगों को नष्ट कर उनके पूर्व अर्थात दुर्गों का उन्होंने ध्वंस कर दिया था। दस्युओं को प्राभूत कर सप्त सिंधव देश के में आर्यों के बस सकने का मार्ग उन्हीं द्वारा प्रशस्त किया गया था। इंद्र का मुख शस्त्र वज्र था। वज्र के लिए ऋग्वेद में चतुष्कोण, सत्कोण, सत्पर्व, सहस्त्र वृष्टि आदि विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। साथ ही इसे आयस अर्थात अयस धातु द्वारा निर्मित भी कहा गया है। वज्र द्वारा इंद्र ने पर्वत में आश्रय ग्रहण किए हुए दानव का वध किया, वहां के जलों को उन्मुक्त किया और पर्वतों के उदर विदीर्ण किए। ऋग्वेद के अध्ययन से इंद्र के दो रूप हमारे सम्मुख आते हैं, उनका मानव रूप और उनका प्राकृतिक शक्ति का प्रतीकात्मक रूप। मानव रूप में इंद्र अनुपम योद्धा है जो आर्यभिन्न दानवों, दस्युओं व दासों को युद्ध में परास्त कर आर्यों के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वृत्र, संबर आदि कितने ही शत्रु राजाओं के इंद्र द्वारा प्राभूत किए जाने का वर्णन वेदों में विद्यमान है, पर इंद्र का एक ऐसा रूप भी ऋग्वेद में मिलता है जो स्पष्टतया अमानव है। अपने इस रूप में इंद्र विद्युतों को उत्पन्न करते हैं और जलों के प्रवाह को अंतरिक्ष से नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ कर देते हैं। इसी को दृष्टि में रखकर कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि इंद्र वृष्टि के देवता हैं और वृत्र मेघ का प्रतीक है। विद्युत रूपी अग्नि को उत्पन्न कर इंद्र मेघों में अवरुद्ध जल को मुक्त करते हैं, जिसका प्रवाह वर्षा द्वारा पृथ्वी की ओर हो जाता है। पर ऋग्वेद में इंद्र को जो इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका कारण उसका वह मानव रूप ही है जिससे कि उन्होंने आर्य जाति के शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया था। उनकी महिमा का बखान करते हुए ऋषि गुत्समद ने कहा है, जिनके बिना मनुष्य युद्ध में विजय नहीं पा सकते, युद्ध करते हुए लोग आत्मरक्षा के लिए जिनकी उपासना करते हैं, वह इंद्र ही है। जब आर्य लोग दानवों, दस्युओं और दास जातियों को परास्त कर सप्त सिंधव देश में निरापद रूप से बस गए और उन्हें किन्हीं बाह्य शत्रुओं से युद्ध की आवश्यकता नहीं रह गई, तो उनके लिए इंद्र का वह महत्व नहीं रह गया जो पहले था। इसी कारण उत्तर वैदिक युग के साहित्य में इंद्र का अधिक महत्व नहीं पाया जाता। त्रित आपत्य, आपान पात, मात रिश्वा और अहिर बुरुधन्य जैसे अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं जिनका इंद्र के साथ निकट संबंध है। इंद्र से प्रोत्साहन पाकर त्रित आपत्य ने अपने पैतृक आयुधों द्वारा त्वष्ट्रा के पुत्र के तीन सिरों पर आघात कर उस द्वारा अवरुद्ध गौं को उन्मुक्त किया था। जैसे इंद्र ने दानवराज वित्र का वध किया था, जैसे ही त्रित आपत्य ने आयस शस्त्र द्वारा बराह अर्थात एक राक्षस को मारा था। अपान पात एक ऐसे देवता हैं जो मेघों से उत्पन्न होने वाली विद्युत अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं और मेघों में अवरुद्ध जल को मुक्त करने में उनका भी हाथ रहता है। मातृष्वा भी एक ऐसे देवता हैं जिनका रूप अग्निमय है और जिनकी उत्पत्ति जल से उत्पन्न होती है। इस देवता से भी मेघ द्वारा उत्पन्न विद्युत अग्नि का ही बोध होता है। अहिर बुद्धन्य देवता का निवास भी अंतरिक्ष के सलीलों में है, उनका संबंध भी वृष्टि से है। इंद्र और उनके सहयोगी ये देवता अनावृष्टि रूप दैत्य अर्थात वृत्र का संहार करते हैं और अंतरिक्ष में अवरुद्ध सलील को उन्मुक्त कर पृथ्वी को उर्वर बनाने में सहायक होते हैं। आर्यों का आर्थिक जीवन प्रधानतया खेती पर ही निर्भर था, इसीलिए उन्होंने अनेक ऐसे देवताओं की कल्पना की थी जिनका संबंध प्राकृतिक शक्तियों से है और जिन द्वारा वर्षा होने में सहायता मिलती है। वर्षा से संबंध ही अन्य अंतरिक्ष स्थानीय देवता अज, एकपाद, मरुत, पर्जन्य, वायु और आपह है।